नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से लेना देना नहीं है, ये केवल वक्फ संपत्तियों से संबंधित है। वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज से नए शुल्क लागू करेंगे। ऑटो आयात पर पहले से लगाया गया 25% शुल्क कल से प्रभावी होगा। इसराइल गाजा में सैन्य अभियानों का विस्तार करते हुए बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों को सुरक्षित निकालेगा। और बेंगलुरु में IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आज विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा है कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से जुड़ा है। श्री रिजिजू ने कहा है कि यह कानून मस्जिद के प्रबंधन के लिए नहीं है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर मुसलमानों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि संयुक्त संसदीय समिति के साथ साथ सरकार ने भी कानून बनाते समय हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया था। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर यह विधेयक लाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा है कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। विधेयक पर चर्चा जारी है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के बाद लाया गया है और इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस JEM के माध्यम से 10 लाख से अधिक लोगों को काम पर रखा गया है। JEM की उपलब्धि पर मुख्य कार्यकारी निदेशक अजय भादू ने कहा है कि इस प्लेटफॉर्म ने डिजिटल क्षमताओं का दोहन किया है और यह प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी खरीदों द्वारा आवश्यक सभी संभावित सेवाओं के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 देश का बौद्धिक पुनर्जागरण है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति वैश्विक स्तर पर शिक्षा और नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त कर रही है। श्री मोदी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक समाचार पत्र में लिखे लेख को साझा करते हुए ये बात कही। लेख में पिछले एक दशक में भारत के शिक्षा क्षेत्र में हुए परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 1.5 साल के भीतर सभी रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि देश के युवा भारत को विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कठुआ जिले के घाटी पर बिलावर के पहाड़ों के बीच पंजे तीर्थी इलाके में आज लगातार दूसरे दिन भी तलाशी अभियान जारी रखा। कल रात सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात और पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन टूटी ने कल बिलावर के पास पंजे तीर्थी का दौरा किया और तलाशी अभियान की समीक्षा की। अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज से नए शुल्क लागू कर देंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर जवाबी शुल्क राष्ट्रपति की घोषणा के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएंगे। ऑटो आयात पर 25% शुल्क कल से प्रभावी होगा। इससे पहले श्री ट्रंप ने 2 अप्रैल को मुक्ति दिवस घोषित करते हुए कहा था कि ये शुल्क अमेरिका के विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता से मुक्ति करेंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कांत्स ने कहा है कि सेना गाजा में अपने अभियान का विस्तार करेगी और बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करेगी। एक बयान में कांत्स ने कहा है कि कब्जा किए गए क्षेत्रों को इसराइली सुरक्षा क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा है कि इसके लिए फिलिस्तीनियों को बड़े पैमाने पर निकालने की आवश्यकता होगी। उन्होंने लोगों से हमास को खत्म करने और इसराइली बंधकों को वापस करने का आग्रह किया है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट ने आज ये जोर दिया कि बहुपक्षवाद ही दुनिया के लिए भविष्य का रास्ता है। चिली और भारत के बीच संबंधों पर आधारित 53वीं स्प्रू हाउस व्याख्यान चिली और भारत ग्लोबल साउथ में एक साथ को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति फोंट ने कहा है कि चिली भारत के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करना चाहता है क्योंकि द्विपक्षीय सहयोग के लिए बहुत बड़ा अवसर है। म्यांमार में पिछले सप्ताह के विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या 2719 हो गई है। 4,500 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं और 441 लोग लापता है। म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन उंग हलवाइंग ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। आपदा के बाद क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जारी है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को लगातार राहत सामग्री और मानवीय सहायता भेज रहा है। सोल में अमेरिकी दूतावास के दक्षिण कोरिया ने अपने नागरिकों को राष्ट्रपति यू सुक योल के महाभियोग पर शुक्रवार को आने वाले संवैधानिक न्यायालय के फैसले से पहले ही भीड़ या प्रदर्शनों से बचने की सलाह दी है। शीर्ष न्यायालय 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने के लिए यून सुक योल के महाभियोग पर फैसला सुनाने वाला है। चीन के दूतावास ने संभावित चरम घटनाओं की चेतावनी दी। दक्षिण कोरिया की पुलिस ने यून सुक योल के महाभियोग मामले में पहले सोल के 14,000 सैन्य कर्मियों को तैनात किया। विश्व स्तर पर मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त का रुख रहा है। दोपहर को कारोबार में सेंसेक्स 416 अंक बढ़कर 76,441 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 111 अंक की वृद्धि के साथ 23,277 पर पहुंच गया है। केंद्र ने देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है जिससे अनुसूचित जनजाति के करीब 3.5 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अब तक देश भर में कुल 721 विद्यालय मंजूर किए गए हैं। इनमें 787 विद्यालय संचालित है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा है कि जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवारों में पढ़ाने के लिए 2018-19 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत सरकार ने 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले हर ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा तक पहुँच प्रदान करने के लिए अन्य सरकारी निकायों के साथ मिलकर कई उपायों को लागू कर रही है। IPL T20 क्रिकेट में आज बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 4 अंकों और नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में 8 विकेट से हरा दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 60 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स ने 16.2 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मनु भाकर कल से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में शुरू होने वाले ISSF विश्व कप 2025 में 43 सदस्य भारतीय निशानेबाजी का दल का नेतृत्व करेंगी। विश्व कप का उद्घाटन समारोह आज होगा। 2025 ISSF विश्व कप की शुरुआत करने वाली ब्यूनस आयर्स मीट में निशानेबाज राइफल, पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करते दिखाई देंगे। इस साल के पहले ISSF विश्व कप आयोजन में 45 देशों के 400 से अधिक निशानेबाज हिस्सा लेंगे। 43 निशानेबाजों के साथ भारत टूर्नामेंट में सबसे बड़ा दल है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।